नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा सबकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तभी हम श्री पंचवटी क्षेत्र के दंडकारण्य के सबसे महत्वपूर्ण स्थान में आए हैं, जिसका नाम है रामकुंड। रामकुंड यानी यहाँ से मेरे रायते हाथ से गोदावरी जी ऐसे त्र्यंबकेश्वर से बहते हुए आ रही है, और आप देख रहे हैं कि ये पश्चिम दिशा है, सॉरी ये पश्चिम दिशा है जहाँ पर भी सूर्य है, मतलब यहाँ पर सूर्य अभी यहाँ से उस मीनार पर गिर रहा है, तो ये पश्चिम दिशा है और ऐसे गोदावरी आ रही है और वह दक्षिण दिशा की ओर ऐसे मुड़ रही है। जा हाँ, लेकिन गोदावरी जा कैसे रही है, ऐसे जा रही है, हाँ ठीक है, तो दक्षिण दिशा में मुड़ रही है, ये इंपॉर्टेंट बात समझना है। जो दिशा में जा रही है वहाँ से जब मुड़ रही है वो दक्षिण दिशा में मुड़ रही है, तो जिस जगह वो मुड़ रही है एक्चुअली जो मोड़ है उस जगह को रामकुंड कहते हैं, यानी कि रामकुंड जो है वो गोदावरी का ही हिस्सा है। इसके कई महत्वपूर्ण लीलाएं हैं इसके अंदर, महात्म्य के अंदर। सबसे बड़ा इसका महात्म्य यह है कि प्रभु रामचंद्र की जो पर्णकुटी थी वो बिल्कुल यहाँ के पास में है, थोड़े सी पास में है, जहाँ से आप लोग आए ना गोदावरी क्रॉस करके, उस जगह कपालेश्वर महादेव का मंदिर है। उसके 5 मिनट चल के आप जाएंगे तो काड़ाराम मंदिर आएगा, और काड़ाराम मंदिर वो जगह है जहाँ पर पर्णकुटी थी, जिस जगह पर आज प्रभु रामचंद्र का मंदिर बनाया गया है, और यहाँ से पर्णकुटी आरंभ होकर तपोवन तक विस्तारित होती है। तो पर्णकुटी का स्थान यहाँ से लेकर बीच में अभी सीतारण जाके आए ना, सीताहरण भी पर्णकुटी से ही हुआ था ना, और लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक भी पर्णकुटी में तो काटा था, पर्णकुटी के किनारे, और फिर वो किनारे में गोदावरी बह रही थी, सब कुछ ज्योग्राफिकली बराबर बैठता ना। तो इस जगह पर जब अगस्त्य मुनि के इच्छा के अनुसार, निर्देश के अनुसार उन्होंने अपना स्थान बसाया, तो उसी जगह पर लक्ष्मण ने पर्णकुटी बनाई। लक्ष्मण का जो सेवा भाव है बहुत सराहनीय है, हर जगह पर स्वामी के रहने की व्यवस्था करना, भाई है लेकिन वो स्वामी की तरफ की सेवा कर रहे हैं, रहने की व्यवस्था करना, खाने पीने की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, स्नान की व्यवस्था, फल फूल की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, हर व्यवस्था। लक्ष्मण एक व्यक्ति, वन मैन आर्मी थे, सब व्यवस्था अकेले करते थे, और कभी भी उन्होंने किंतु परंतु नहीं कहा बीच में, भैया मैं थक गया अभी मुझे आराम करने दो, बहुत हो गया अभी, बहुत दिन से भाग रहा हूँ। जब से निकले हैं जब तक वापस नहीं गए, जितना भी संघर्ष, कठिनाइयाँ, जितने भी संघर्ष हुए सब में वो राम की सेवा करते रहे। इसलिए रामायण में ऐसे किरदार है, ऐसे एक एक कैरेक्टर्स हैं, एक जटायु है, एक विभीषण है, एक भरत है, देखो भरत का चरित्र कैसा है, वो तो गया था ससुराल में अपने सेवा करने के लिए, उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन पूरे अयोध्या वासियों ने ऐसे लिखा है शास्त्र में कि एंड तक भरत को माफ़ नहीं किया, क्योंकि उनको लगा था कि भरत का इसमें हाथ है, अभी जनता तो जनता ही होती है, उनके मत प्रवाह को कौन बदल सकता है, इतना सारा घमासान हो गया तो लोगों को लगा कि भरत का सम्मति हुए बिना इतना बड़ा षड्यंत्र नहीं हो सकता है, और कई कई सोच रही है मेरा बालक के कल्याण के लिए मैं कर रही हूँ, लेकिन घात हुआ भरत का उसमें। जब भरत आ रहा है लक्ष्मण और राम को मिलने के लिए जंगल में, वो किस उद्देश्य से आ रहा है कि मैं भी जंगल में जाकर वहीं पर राज्याभिषेक कराऊंगा, वापस आने का देर नहीं है मेरे पास, उधर ही करूंगा मैं, और वो सेना लेके आ रहा था, तो लक्ष्मण को यहाँ पर लगा कि भरत सेना लेकर वन में हम पर आक्रमण करके हमको मारने के लिए आ रहा है। इतने क्रोधित हो गए थे वो पेड़ पे चढ़कर देखा उन्होंने कि भरत अयोध्या का राजदंड लेकर, सेना लेकर जंगल में प्रवेश कर रहा है,
भैया अभी मैं मेरा धनुष बाण लेकर सारी सेना को समाप्त कर दूंगा, भरत को भी समाप्त कर दूंगा।
प्रभु राम कहते हैं थोड़ी देर रुक जाओ, भरत का हृदय मैं जानता हूं, आपकी बात सही भी हो सकती है, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि भरत प्रेम के वश यहां पर आ रहा है, थोड़ी देर रुको, देखते हैं क्या होता है। और जब भरत आकर भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और विनती करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तब लक्ष्मण को पश्चाताप होता है कि मैंने क्या सोचा उसके बारे में, उधर भी भरत के बारे में गलत फहमी है ना। लेकिन जनता ने जो दुख भोगा राम के वनवास जाने का, जो सदमा जनता को पहुंचा, उस सदमे की चोट की वजह से जनता कभी भी इस सत्य को स्वीकार नहीं कर सकी कि इसमें भरत का कोई हाथ नहीं था। और भरत में ऐसे कहते हैं कि जब भरत नंदीग्राम में रहते थे ना, कुटिया बनाकर, पादुका रखते हुए, वलकल पहनकर, कंदमूल खाकर, तो वहाँ के शरयू नदी में वो स्नान करते थे। स्नान करते समय अयोध्या की जनता आकर भरत को पत्थर मारते थे कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, तुम्हारी वजह से तुम्हें राजा बनाने के हेतु तुम्हारी माता ने यह सब कुछ षड्यंत्र रचा, तुम ही सबके कल्प्रेट हो। तो शांति से वो लोगों के पत्थर झेलते थे, कभी भी किसी को उन्होंने प्रतिकार नहीं किया, और दोबारा पत्थर उठा के बोलता था ये लो और मारो, अगर यही मेरी राम की सेवा है तो मुझे मंजूर है, ये मेरे प्रभु को मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। एक साल नहीं 14 साल जीवन जिया उन्होंने वहाँ पर राम जैसे ही, और राम वन में तो वनवास कर रहे हैं, इनको पत्थर भी झेलने पड़ रहे हैं, लोगों के ताने भी झेलने पड़ रहे हैं, लोगों की गलत फहमियाँ भी झेलने पड़ रही हैं। इस तरह का तपस्वी जीवन राजपुत्र और राजा होने पर भी भरत ने जिया। हाँ मनु प्रभु जी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राजा होने का मौका मिलने पर भी प्रभु की शरणागति में सब कुछ त्याग करके उन्होंने एक वनवासी का जीवन जिया। तो ऐसे भरत है। सीता देवी का चरित्र देखो आप, कहाँ की राजकन्या, कहाँ उसका इतिहास, लेकिन सतीत्व इसका इतना तेज था कि सब कुछ छोड़ के भगवान के साथ में जंगल में रही हो। फिर जब जंगल में रहकर आने का समय आया तो क्या हुआ, हम उसको पहले अग्नि परीक्षा लेंगे। भगवान ने जो भी किया आदर्श किया, एक राजा के रूप में जो आदर्श करना था वो किया, लेकिन सीता को वो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। लक्ष्मण ने कहा कि आप अन्याय कर रहे हो मेरी भाभी पर, भाभी ने कितना कष्ट सहन किया है, अभी अभी वो छूट रही, एक साल उसने अन्न ग्रहण नहीं किया है, और आपको मिलने के लिए इतना व्याकुल है, आप कह रहे मुझे मिलने के पहले अग्नि परीक्षा करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा लक्ष्मण मैं केवल पति नहीं हूँ, मैं राजा भी हूँ, आगे जाकर जनता क्या कहेगी, क्योंकि वैदिक नियम ऐसा होता है कि एक रात भी कोई कन्या या कोई पत्नी किसी के घर रहती है, एक रात गुजारती है, तो उसको स्वीकार नहीं करते। हाँ तो उस समय एक तो बाह्य कथा क्या है कि उस समय सीता आई, अग्नि में प्रवेश किया और अग्नि से बिल्कुल पवित्र होकर निकली वो, लेकिन उस समय अग्निदेव ने वो छाया सीता को स्वीकार किया, और जो सीता उनके पास थी उनको लेकर वो अग्निदेव बाहर आ गए। आपने देखा होगा रामायण में ना, अग्निदेव स्वयं सीता को लेकर बाहर आती, तो वो सीता जो गोदावरी कपिला संगम में प्रभु रामचंद्र ने उनको सुपुर्द की थी, उस सीता को लेकर अग्निदेव बाहर आते हैं, और जो सीता को रावण के पास से ले आए उसको वापस ले लेते हैं। तो ये अंदर की गर्भित लीला है, फिर स्वीकार करते हैं। उसके बाद में जब राज्याभिषेक होता है, राजा बनते हैं, तो रात को गश्त लगाते हैं ना, गश्त, तो उस गश्त में ऐसा पता चलता है कि एक धोबी अपनी पत्नी को बोल रहा है कि रात को तो कहाँ थी, कल कहाँ रुकी थी, तो वो कहती मैं कहीं थी, तो चले जाओ यहाँ से, आपने एक रात किसी के घर में बिताई है, मेरे घर में नहीं आ सकते आप, मैं थोड़ी राम जैसा हूँ, मैं राम जैसा नहीं हूँ। उन्होंने तो अपनी पत्नी एक साल के बाहर रखने के बाद भी स्वीकार कर लिया, मैं थोड़ी ऐसा हूँ। तो ये दूतों ने जाकर बताया राम जी को, तो प्रभु राम ने फिर सीता को जंगल भेज दिया, क्योंकि जनता के सामने आदर्श राजा बनने का उनका कर्तव्य था। तो फिर लक्ष्मण परेशानी में आ गए, उन्होंने कहा लक्ष्मण रथ तैयार करो और सीता को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ के आओ। और सीता तब उसमें गर्भवती थी, उसको लगा कि अच्छी बात है बहुत, वाल्मीकि मुनि का संग मिलेगा। लेकिन लक्ष्मण जी रथ जोड़ रहे हैं और रो रहे हैं, रथ चला रहे हैं और रो रहे हैं, आगे जाकर फूट फूट के रो रहे हैं, और सीता जी बहुत आनंद में वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जाने की बात से बहुत खुश है। आगे जाकर पूछती है, भैया आप क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, मैं आपको घुमाने को नहीं ले जा रहा हूँ, आपको मैं छोड़ने जा रहा हूँ, मेरे लिए आदेश यह है कि आपको छोड़ के आना है। तो सीता उसी उस परीक्षा को भी सह लेती है, अपने सतीत्व को सिद्ध करने के लिए हर परीक्षा को सह लेती है, हर परीक्षा में यशस्वी हो जाती है। और फिर जाकर ये सब रामायण समाप्त होने के बाद में जब लवकुश का जन्म होता है, तो लवकुश वाल्मीकि मुनि से पूरा रामायण की कथा को सीख लेते हैं, उसका पारायण करते करते घूमते हैं तो राम के दरबार में पहुंच जाते हैं, और वहां राम को ही अपनी राम की कथा सुनाते हैं। तब राम पहचानते हैं कि ये मेरे ही बालक हैं, और तब जाकर वाल्मीकि मुनि के आश्रम से सीता देवी वापस लौट के आती है। और उसके बाद फिर वो 11,000 साल राजा के रूप में अयोध्या पर राज्य करते हैं। तो इसके बीच में आप क्या देखते हैं, प्रभु रामचंद्र के जीवन में विरह अधिक है और मिलन बहुत कम है। जितनी भी लीला है वो सब दुख की और विरह की लीला है, प्रभु को क्या जरूरत है सब करने की। लेकिन फिर भी हमारे और आपके लिए एक आदर्श स्थापन करने के लिए प्रभु ये सब कष्ट सहन करते हैं। कृष्ण भगवान के अवतार में तो आनंद आनंद लेते हैं, रासलीला रचाते हैं, माखन चुराते हैं, सब जगह आनंद लेते हैं, लेकिन राम के अवतार में, मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार में कष्ट ही कष्ट सहनते हैं, सहन करते हैं खुद के लिए। बहुत कम समय इधर यहाँ थोड़ा आनंद लिया उन्होंने, बाकी अधिक से अधिक समय कसौटी, परीक्षा, आदर्शवाद, इसी के चक्कर में उन्होंने कष्ट सहन किया है। तो ऐसा रामायण जो है वो हमारे आपके लिए एक आदर्श शास्त्र है। एक पत्नी को कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक पति को कैसे होना चाहिए, एक भाई, एक पुत्र, हाँ, एक जमाई, एक बेटा, एक राजा, हर प्रकार के रोल में राम, सीता, लक्ष्मण, भरत ये हमको आदर्श दिखाते हैं कि हाउ टू बिहेव परफेक्टली। तो प्रभु रामचंद्र जब यहाँ पर आए तो गोदावरी को दक्षिणावर्ती, दक्षिणाभिमुख देखकर उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध किया यहाँ पर। भरत ने तो उधर किया था अयोध्या में, प्रत्यक्ष भरत ने किया था, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र के नाते जो श्राद्ध करना था वो राम जी ने यहाँ पर आकर तर्पण किया है। इसलिए ये बहुत श्रेष्ठ जगह है जहाँ दशरथ जी का तर्पण प्रभु ने किया है। साथ में रोज राम और सीता और लक्ष्मण ने रामकुंड में स्नान किया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रभु रामचंद्र का चरणामृत है, प्रभु रामचंद्र का अभिषेक, यानी कि नदी में उन्होंने स्नान किया है। और आप में से बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन प्रभु रामचंद्र अगले अवतार में कृष्ण बनकर आए, उसके अगले अवतार में कलयुग में आए चैतन्य महाप्रभु बनकर, हाँ, और चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो भक्त बनकर आए, भगवान बनकर नहीं। इसलिए बहुत लोगों को पता नहीं है कि वो भगवान है, क्योंकि वो छन्न अवतार, मतलब छुपावा अवतार, भगवान ने स्वयं भी डिक्लेयर नहीं किया कि मैं भगवान हूँ, वो भक्त के रूप में आए, मैं भगवान का भक्त हूँ, एक भक्त के रूप में कैसे श्रेष्ठ भक्ति करनी है यही दिखाने के लिए वो आए थे। तो जहाँ जहाँ प्रभु ने लीला किया है, मतलब रामचंद्र भगवान ने, लक्ष्मण ने और आगे अवतारों में, वहाँ सब जगह चैतन्य महाप्रभु गए हैं। जैसे हम लोग यात्रा करते हैं ना, भगवान के पवित्र स्थानों पर जाकर यात्राएँ करते हैं, वैसे भक्त के रूप में प्रभु ने भी सब पवित्र स्थानों का यात्रा किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, भक्त अवतार हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने भी यहाँ पर स्नान किया है और यहाँ पर संकीर्तन किया है। त्र्यंबकेश्वर में भी उन्होंने त्र्यंबकेश्वर का दर्शन किए और वहाँ पर कुशावर्त में स्नान किया, जहाँ पर हम कल जाएंगे, और वहाँ पर भी उन्होंने झूम झूम कर कीर्तन किया है। त्र्यंबकेश्वर के मंदिर में गोल गोल घूम कर, झूम झूम कर कीर्तन करके सबको भाव विभोर कर दिया उन्होंने। यहाँ पर भी आए पंचवटी में, जहाँ पर सीता गुफा है, यहाँ पर भी आए जहाँ पर रामकुंड है, जहाँ पर कालाला मंदिर है, वहाँ पर भी आए। उन्होंने भी सब जगह हरिनाम संकीर्तन किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी के अवतार हैं, बलराम जी भी चैतन्य महाप्रभु, जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आए तो बलराम भैया भी उनके साथ में नित्यानंद प्रभु बनकर आए। हाँ, कुछ लोग नित्यानंद मतलब वो वज्रेश्वरी के स्वामी समझते हैं, लेकिन वे नित्यानंद स्वयं बलराम जी भगवान हैं, कृष्ण बलराम और चैतन्य नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु बचपन में एक साधु के साथ में घर से चले गए थे। साधु ने उनको पूरा भ्रमण करवाया तीर्थ स्थानों पर। साधु की सेवा से मुक्त हो गए तो फिर वो भी उन्होंने भी अपना खुद का भ्रमण किया है, और अपने भ्रमण में वो वृंदावन में रुके थे कुछ समय के लिए, और यहाँ पर भी आए हुए हैं। उन्होंने भी यहाँ पर रामकुंड पर स्नान किया है और यहाँ पर कुछ समय निवास किया है। तो नित्यानंद जी का भी ये चरणामृत है, प्रभु रामचंद्र का भी चरणामृत है, सीता जी का भी है, चैतन्य महाप्रभु का भी है। ऐसे ये बहुत ही पवित्र स्थान है। अभी इस रामकुंड का जो महात्म्य है वो मैं आपको संक्षेप में सुनाता हूँ। हाँ, सब लोग सुन रहे हैं ना? हरि बोल। नहीं, जोर से नहीं आवाज आ रही है। हाँ, तो एक दिन सृष्टि के निर्माण के काल में किसी कल्प में ब्रह्मा जी के 5 मुख थे एक समय। हाँ, हर समय नहीं, 4 मुख तो वेदों का वर्णन कर रहे थे। बहुत रोचक कथा है, ये सुनिए आप अच्छी तरह से। 4 मुख वेदों का गुणगान, भगवान का गुणगान, भगवान की स्तुति कर रहे थे, और 5वां मुख जो था वो प्रजल्प कर रहा था। प्रजल्प मतलब क्या? गॉसिप, यहाँ वहाँ की बेफिजूल की बातें, उसको संस्कृत में कहते हैं प्रजल्प। प्रजल्प यानी जो ज़रूरत नहीं है, या किसी की निंदा वाली बात, या किसी के ऐसे ग्राम्य कथा खोलते हैं। ग्राम्य कथा मतलब क्या? गांव में सब लोग शाम को इकट्ठा होते हैं, सब वट एवर, हाँ, पेड़ के नीचे, और सब दुनिया भर की बातें करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या, उसके घर में क्या हुआ, उसके लड़की ने क्या किया, उसके लड़के ने क्या किया, फिर इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये ज़मीन बिक गई, ये किसने खरीद लिया, उसको कोई लाभ नहीं उसको करने से। लेकिन फिर मराठी में क्या बोलता है? चकाट्या पिटने। हिंदी में बोलते हैं ग्राम्य कथा करना, हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं गॉसिप। तो 5वां मुख जो है वो गॉसिप कर रहा था। तो शंकर भगवान को ये पसंद नहीं आया, लिए प्रजल्प जो है ये भक्ति के लिए बहुत हानिकारक है। तो क्रोध में आकर शिवजी ने त्रिशूल लेकर वो 5वां शीश जो है ब्रह्मा जी के कंधे से उखाड़ दिया, ताकि ब्रह्मा को गॉसिप से वो मुक्त करना चाहते थे, क्योंकि वो एक ही मुख से वो प्रजल्प हो रहा था। लेकिन हुआ क्या, वो शीश जो है वो त्रिशूल को ही अटक गया, त्रिशूल से उस शीश को निकाल नहीं पाए वो। तब शिवजी के ध्यान में आया, अरे ये तो ब्रह्म हत्या हो गई, ब्रह्म हत्या नहीं, ब्राह्मण की हत्या हो गई, मुझे ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया, तो भी क्या करें। तो देवताओं ने बताया कि अभी आपको सभी तीर्थों की यात्रा करनी पड़ेगी, सभी जितने भी तीर्थ ब्रह्मांड में हैं वहाँ पर स्नान करना पड़ेगा आपको, और जब भी ये निकलेगा ना आपके त्रिशूल से, तब आप समझ सकते हो कि आप ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त हो गए। शिवजी महाराज सब जगह गए, खाली पृथ्वी पर नहीं, वो तो शिवजी है ना, वो सब जगह जा सकते हैं, स्वर्ग में, ब्रह्मा लोक तक गए, जहाँ जहाँ तीर्थ स्थान है सब जगह स्नान किया, नदी में, पर्वत में। लेकिन सारा चीज़ करने के बाद भी त्रिशूल वहीं के वहीं, सर भी वहीं के वहीं त्रिशूल के ऊपर। तो बड़े दुखी होकर, उदास होकर वो रामकुंड पे आके बैठ गए। क्या करें क्या करें, सोचकर अभी क्या किया जाए और क्या किया जाए। तो रामकुंड के पास रात का समय था, बड़े उदास में बैठे थे, तो क्या देखते हैं कि एक बछड़ा गाय से, अपनी माता गाय से बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है बछड़ा? कह रहा है, मैया ये जो अपना मालिक है ना, ग्वाला गोपाल, जो अपनी, जो हम दोनों उनके घर पर रहते ना, मतलब ब्राह्मण जो है, बहुत दुष्ट है, बहुत कष्ट देता है, बहुत पीटता है, बहुत बुरा भला कहता है, डंडा दिखाता है हमेशा, मैं कई दिन से उसके आतंक से परेशान हूँ, और मैंने आज निर्णय कर लिया है कि मैं दोनों मेरे सिंह उसके पेट में घुसाकर कल सुबह उसका वध करने वाला हूँ। बस हो गया, अभी मैं परेशान हो गया हूँ, मैं और उसका आतंक को सहन नहीं कर सकता हूँ। तो मैया कहती है, अरे बेटा जानते हो ब्राह्मण हत्या का कितना पाप लगता है, वो कैसे फेड़ोगे तुम, गोरे गोरे तुम्हारी त्वचा है, गोरे बछड़ा हो तुम, सब काला हो जाओगे, निस्तेज हो जाओगे, सब तेज नष्ट हो जाएगा, और ब्रह्म हत्या के पाप से नरक में जाओगे। तो नहीं मैया, मैं ब्रह्म हत्या से मुक्त होने का उपाय जानता हूँ, कल देखते रहना क्या होता है। शंकर जी सुन रहे हैं, ब्रह्म हत्या की बात हो रही है, और उसका रहस्य जो है वो बालक बछड़ा जानता है। तो रात भर रुके वहाँ पर, जैसे ही सुबह हुई, गौशाला में से बालक बछड़ा उठा, सीधा घर के अंदर घुसा, ब्राह्मण को ढूंढा, उसके पेट में 2 सिंह घुसाए, वहीं कहीं ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तो एकदम काला पड़ गया वो, पूरा सफ़ेद बछड़ा था, एकदम निस्तेज और काला पड़ गया। सीधा वहाँ से उतरा, रामकुंड में छलांग लगाया उसने, बाहर आया एकदम गोरा गोरा। उसके पीछे पीछे शिव जी ने त्रिशूल लेकर रामकुंड में छलांग लगाई, डुबकी लगाया, जब बाहर आए तो शीश गायब ब्रह्मा का। तब वो समझ गए कि केवल रामकुंड में स्नान करने के बाद ही शंकर भगवान ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त हो गए। तो रामकुंड का और एक महात्म्य ऐसा है कि रामकुंड में ब्रह्म हत्या तक का पाप नष्ट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्म हत्या करो और यहाँ पर स्नान करो आके, डोंट थिंक लाइक दैट। शिव जी ने ब्रह्म हत्या करने के भाव से राम उसका शीश नहीं काटा था, वो तो ब्रह्मा को प्रजल्प से बचाना चाहते थे, उनके पिताजी को एक अच्छे भाव से किया था, फिर भी वो ब्रह्मत्या के पाप से मुक्त नहीं हुए, ऐसे मुक्त नहीं हुए। लेकिन जो ब्रह्मत्या का पाप से मुक्त करने के लिए जब उन्हें रामकुंड में स्नान किया तब तो ब्रह्मत्या का पाप नष्ट हो गया। तो ये इतना महान तीर्थ है कि हम लोग इतना अपराध दुनिया में करते रहते हुए जाने अनजाने में, कदम कदम पर, हाँ पदम पदम यत विपदम नते शाम, हर कदम पर हम लोग पाप करते हैं। सांस लेते तो भी कितने बैक्टीरिया मर जाते हैं, गोली खाते हैं दवाई के लिए तो भी कितने जंतु मर जाते हैं, खाना पकाते हैं तो भी कितने जंतु मर जाते हैं, तो जिए कैसे। लेकिन हर प्रकार के पाप रामकुंड में गोदावरी में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। फिर और एक कथा है भगवान सुंदर नारायण की। हाँ अच्छा, अभी वो जो शिवजी हैं जो ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो गए, उनका नाम पड़ गया कपालेश्वर महादेव, क्योंकि ब्रह्म कपाल जो था उनके त्रिशूल पर विराजमान था, तो नाम ही पड़ गया उनका कपालेश्वर महादेव। और कपालेश्वर महादेव यहीं बस गए इसी कुंड के पास में। तो आप जहाँ से उतर के आए ना, तो प्रभु जी ने मुझे फ़ोन किया था कि आप लोग किधर हो, तो मैंने उन्होंने कहा कि हम कपालेश्वर मंदिर के नीचे, तो उधर पहले क्यों लेके नहीं गए, आपको कुछ समझता नहीं था हम कहाँ पर आए हैं। अभी जब जाएंगे आपको समझेगा कि आप कहाँ पर हो। उस मंदिर में आपको एक शंकर जी का लिंग दिखेगा। हाँ शंकर जी के मंदिर में और कौन होता है, नंदी बैल। उस मंदिर में नंदी बैल नहीं है, का कारण यह है कि इस जगह पर नंदी बैल यानी कि जो बैल है वो उनके गुरु बने हुए हैं और उन्होंने उनको मार्गदर्शन करके ब्रह्म हत्या से मुक्त होने का रास्ता दिखाया था। इसलिए उन्होंने नंदी बैल को कहा कि आप यहाँ पर इस मंदिर में मेरे सामने मत बैठना, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको गुरु के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए कपालेश्वर महादेव में नंदी बैल का स्थान नहीं है, नंदी बैल है ही नहीं वहाँ पर। तो शिवजी महाराज भी, नंदी बैल उनका सेवक है, लेकिन जब वो गुरु के रूप में उनको शिक्षा देता है तो उस जगह पर वो अपने सामने उनको दास के रूप में बिठाते नहीं है। ये शिव जी का महात्म्य है। तो वैसे ही इस तरफ मेरे हाथ इस तरफ एक और सुंदर मंदिर है, उसका नाम है सुंदर नारायण मंदिर। और मंदिर की बहुत लंबी कथा है सत्ययुग की। हाँ जो वृंदा देवी है वो कृष्ण भगवान की बहुत प्रिय सखी है, जो इस पृथ्वी पर तुलसी का पौधा बनकर हमको सबको दर्शन देती है, उसकी ये कहानी है। मैं आपको बड़े संक्षेप में बताता हूँ। एक जालंधर नाम का राक्षस था, वो दोनों वृंदा देवी और वो व्यक्ति जो भी था, उन्होंने भगवान के धाम में होते हुए कोई अपराध किया, तो दोनों को शाप मिला कि आप राक्षस बनोगे और आप पृथ्वी पर जाओगे। तो वृंदा देवी को पृथ्वी पर जाना पड़ा, एक घर में जन्म लिया उसने। और जालंधर जो था वो था भगवान का सेवक, लेकिन वो यहाँ पर राक्षस बन के जन्म लिया उसने, बड़ा खूंखार राक्षस बना। वो देवताओं पर भी उसने राज्य किया, देवताओं को परास्त किया, और कई बार देवताओं ने अलग प्रकार से उनको मारने का प्रयास किया, लेकिन वो बहुत अपराजित रहे। यथावकाश उनका वृंदा देवी का मिलन हुआ, उनका विवाह हो गया। और वृंदा देवी जो थी वो इतनी पतिव्रता थी कि विवाह करने के बाद वो अजिंक्य बन गया, कोई उनको परास्त नहीं कर सका। तो सब देवता कई बार परास्त होने के बाद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जोर से बोलो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना आपका उत्साह रहेगा उतना मुझे बताने का उत्साह रहेगा, ये भी ध्यान रखना। तो वो पतिव्रता होने के कारण वो परास्त भी होना नामुमकिन हो गया। तो सब देवता फिर ब्रह्मा को लेकर फिर विष्णु के पास गए और कहा कि क्या करें, उसको मार ही नहीं सकते क्योंकि उसकी पत्नी इतनी पतिव्रता है, उसकी वजह से वो अजिंक्य हो गया है। तो अभी आप ही उपाय कीजिए। तो विष्णु ने कहा कोई बात नहीं, उसका कुछ हल करना पड़ेगा। अभी अगर पृथ्वी को अगर कोई राक्षस या आतंक से बचाना है तो कुछ भी करके उसको करना होगा, क्या उसमें। जैसे कर्ण को मारने के लिए कुछ नीति नियम तोड़कर मारना पड़ा, लेकिन उसको मारना ज़रूरी था। उन्होंने कहा आप जाओ, मैं आ रहा हूँ। आप जाके अभी कई बार हार चुके हो, एक बार फिर लड़का रहो उसको युद्ध में। देवताओं की हिम्मत नहीं हो रही थी, जिसके बाद जिसके साथ कई बार हार चुके हैं उसको जाके दोबारा ही चैलेंज करना है खुद। तो बड़े परेशान हो गए, लेकिन भगवान का आदेश था तो दोबारा चैलेंज किया और दोबारा युद्ध शुरू हो गया और दोबारा वो देवताओं को परास्त करने लगा। तो देवता सोच रहे क्या भगवान कर क्या रहे हमको दोबारा बोला आक्रमण करने के लिए। और यहाँ पर भगवान जो है जब से आक्रमण किया हो देवताओं ने तो ये घर से फिर दोबारा निकला। वो उसको बड़ा आश्चर्य हो गया कि अभी अभी तो हरा के आया, अभी हिम्मत कैसे इनकी हुई कि हम पर वापस आक्रमण करें और हमला करें और चैलेंज करें। तो पत्नी ने तिलक किया और तुरंत युद्ध में चला गया। जैसे ही वो युद्ध में चला गया, वो युद्ध वापस जीतने लगा, तो घर पे विष्णु भगवान जालंधर का रूप लेकर आ गए। वृंदा देवी को लगा अरे बड़ी जल्दी आ गए आप, क्या करें युद्ध समाप्त हो गया, आ गया। तो बड़ी प्रेम से वृंदा देवी ने अपने जालंधर रूपी आने वाले व्यक्ति की सेवा की और उसका पातिव्रत्य भंग हो गया उसमें। जैसे ही पातिव्रत्य का भंग हो गया, वहां पर शिव जी का त्रिशूल इसके गले में घुस गया और शरीर से अलग हो गया। तो उसको बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे जब तक मेरी पत्नी मेरे साथ है, उसका पतिव्रत धर्म मेरे साथ में है, तब तक मेरा वध नहीं हो सकता है। राज वध कैसे हो गया, मतलब क्या मेरे पत्नी का पतिव्रत्य भंग हो गया। तो वो शीश जो है शरीर से अलग हो गया और त्रिशूल पे लटका हुआ वृंदा 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 पुकारते हुए अपने घर आया। तो इधर अंतपुर में वृंदा देवी जो विष्णु आए हुए हैं जलंधर के रूप में, उसके साथ में एकांत में बैठी हुई है और बाहर से वृंदा वृंदा पति की आवाज़ में पुकार सुन रही है। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है, अरे पति तो मेरे साथ में बैठे हुए हैं और पति की आवाज़ से पुकारता हुआ कोई आर्त आवाज़ में पुकार रहा है बाहर से। तो बाहर भाग के आती है तो देखती है त्रिशूल में लटका हुआ पति का शीश पुकार रहा है, वृंदा देवी क्या हुआ, वृंदा देवी क्या हुआ। तब वो समझ में आता है उसको कि मेरे साथ छल किया गया है। तो ऐसे अग्नि जैसे नज़र से वो विष्णु को देखती है जो पति के रूप में खड़ा है, तो उसकी नज़र को देखकर विष्णु विष्णु रूप में प्रकट हो गए। मतलब जालंधर का रूप बनाए रखना उनके लिए नामुमकिन हो गया, उसकी नज़र के प्रभाव से उसको रूप अपने मूल रूप में आना पड़ा। और अभी सामने विष्णु खड़े हैं और पति का शीश आके उसके गोद में गिर जाता है। तो विष्णु को शाप दे दिए कि आपने मेरे साथ छल किया है, इसलिए आप पत्थर बन जाओगे। तो विष्णु जी कहते हैं हम पत्थर ज़रूर बनेंगे लेकिन आपके चरणों में बनेंगे, और आपने हमको शाप दिया इसलिए हम आपको शाप देते हैं कि आप पौधा बनोगे, और आप पौधा बनोगे और उस जो पौधा आप बनोगे उसके चरणों में हम हमेशा रहेंगे। तो वो कौन है, तुलसी और शालिग्राम, ये उसकी कथा है। हकीकत में वो तो भगवान विष्णु की भक्त थी वो, तो एक तरह से विष्णु ने कोई चरित्र भंग नहीं किया, ये तो लीला लीला भगवान ने किया है देवताओं को मुक्त करने के लिए। लेकिन मूलतः वृंदा देवी गौलोक वृंदावन के कृष्ण की भक्ति है, वो विशेष भक्त है कृष्ण की, वो अष्टगोपियों से अलग उसका विशेष स्थान है, जो सारे ब्रज की लीलाओं को आयोजन करती है। वो सारा कोऑर्डिनेशन और व्यवस्थापन जो है भगवान की लीलाओं का, उसे वृंदा देवी गौलोक वृंदावन में करती है। वो किसी शाप के वजह से उनको यहाँ पर आकर राक्षस से विवाह करना पड़ा उस शाप के फल के रूप में, लेकिन थी तो भगवान की भक्त वो, और भगवान भी अपने भक्त को पहचानते हैं। इसलिए भगवान ने कहा पत्थर बनेंगे आपके चरणों में बनेंगे, भगवान भी अपने भक्त के चरणों में रहने के लिए इतने लालायित रहते हैं। तो वो शालिग्राम जो है तो उनका रूप नष्ट हो गया ना, जो दो पैर चार पैर सॉरी चार हाथ दो पैर का जो सुंदर रूप है वो नष्ट हो गया ना, तो पत्थर गोल गोल बन गए वो। तो उस पत्थर रूपी शालिग्राम भगवान जो है उन्होंने राम कुंड में स्नान किया। मतलब जो पत्थर है वो भगवान है, अल्टीमेटली भगवान है, पत्थर नहीं है वो। तो पत्थर के रूप में शालिग्राम के रूप में शालिग्राम जी ने राम कुंड में स्नान किया और पुनः अपना नारायण का सुंदर रूप प्राप्त किया, इसलिए उनका नाम पड़ा सुंदर नारायण मंदिर। अपना खोया हुआ सौंदर्य उन्होंने दोबारा प्राप्त किया राम कुंड में स्नान करके, इसलिए इसी राम कुंड के किनारे पे वो सुंदर पत्थर का मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर के अंदर वृंदा देवी लक्ष्मी देवी और नारायण जी, इनका दर्शन है। लेफ्ट में वृंदा देवी खड़ी है, राइट में लक्ष्मी देवी है, मोस्टली ऐसा ही लगता है। लेकिन दो देवियां हैं, एक तुलसी देवी है और एक लक्ष्मी देवी है, बीच में नारायण भगवान खड़े हैं, तो आप उसका दर्शन कर सकते हैं। और एक क्षेत्र का ऐसा महात्म्य है, कितना बताया महात्म्य आपको मैंने, सबको याद आएगा ना कि सब सो रहे हैं, हाँ नहीं ना। एक महात्म्य बताया, प्रभु रामचंद्र ने स्नान किया सीता लक्ष्मण के साथ। दूसरा चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने स्नान किया। तीसरा बताया पिताजी का श्राद्ध किया उन्होंने वहाँ पर। शिव जी का शीश जो ब्रह्मा जी का था वो यहाँ पर मुक्त हो गया और शालिग्राम जी ने यहाँ पर स्नान किया। और एक महात्म्य बचता है इस जगह का, वो यह है जब देवताओं का राक्षसों के द्वारा पराजय हो गया तो देवताओं को ऐसे दिया गया सूचना कि अभी आप राक्षसों से अभी युद्ध नहीं बोलना, इस समय सुलह कर लेना और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखना कि समुद्र मंथन करेंगे, क्षीर सागर का मंथन करेंगे तो अमृत की प्राप्ति होगी, तो दोनों मिलकर अमृत निकालने का प्रकल्प प्रोजेक्ट हाथ में लेना। एक तरफ से दानव खींचेंगे, एक तरफ देवता खींचेंगे, बीच में रवि के रूप में भगवान मंदार पर्वत के रूप में आएंगे। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? क्षीर सागर जहाँ पर क्षीर उदकशाही विष्णु निवास करते हैं, जो दूध का सागर होता है, उसका मंथन करने के बाद में अमृत प्राप्त होगा, ऐसे शास्त्र में लिखा हुआ है। तो ये प्रस्ताव रखते हैं और दोनों पार्टी एग्री हो जाते हैं। क्या सोचते हैं कि हम लोग मंथन करेंगे, जब अमृत निकलेगा दोनों बांट के लेंगे। राक्षस मन में क्या सोचते हैं? चुपचाप रहो, जब तक मंथन निकलता है, मंथन हो रहा है, तब तक साथ बनाए रखो, जब अमृत निकलेगा तो उसको छीन के हम लोग भाग जाएंगे। फिर दोनों चालू करते हैं, वासुकी नाग को दोरी बनाते हैं, मंदार पर्वत को रवि बनाते हैं। लेकिन मंदार पर्वत जो है वासुकी के मंथन करने के द्वारा ऐसे ही अस्थिर हो जाता है, अस्थिर। तो फिर कृष्ण भगवान कछुआ अवतार लेते हैं, हाँ क्या कहते हैं उसको, कूर्मा अवतार, और उनके पीठ पर मंदार पर्वत को स्थिर करते हैं और फिर वापस मंथन शुरू होता है। फिर वापस पर्वत जो है दोलायमान होता है, फिर भगवान अजीत का अवतार लेते हैं, भगवान अजीत, और उस पर्वत के ऊपर बैठ जाते हैं उसको स्थिर करने के लिए, और फिर दोबारा मंथन होता है। जब इसके बाद में स्थिर होने के बाद में मंथन होता है तो उसमें से हलाहल विष निकलता है, आपने सुना है ना, इतना भयंकर विष है वो कि केवल उस विष के होने से ही पृथ्वी का और ब्रह्मांड का नाश हो सकता है। सब लोग भाग गए, सब दोरी वरी छोड़ दिया और भाग गए सब लोग। फिर शंकर जी को बुलाया गया और शंकर जी ने वो विष को प्राशन किया और दोबारा फिर मंथन शुरू हुआ। फिर उसके बाद में 14 रत्न का निर्माण हुआ है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 14 रत्नों का प्राप्ति हुआ है। उसमें ऐरावत जो इंद्र को दिया गया, उच्च श्रवा अश्व घोड़ा किसी और को दिया गया, लक्ष्मी देवी का जन्म समुद्र से हुआ है, ऐसे 14 रत्न का निर्माण हुआ और उसका वितरण किया गया। और 14 रत्न के बाद में फिर मंथन जारी हुआ, उसके बाद में फिर धन्वंतरी भगवान उसमें से प्रकट हो गए और हाथ में अमृत का कुंभ लेकर आए और झट से राक्षसों ने उसको पकड़ लिया और भाग गए। वो तो बहुत लंबी कथा है। फिर राक्षसों के हाथ से अमृत को छुड़ाने के लिए भगवान ने मोहिनी अवतार लिया और वो इतनी सुंदर थी तो उन्होंने कहा कि देखो अभी झगड़ा हो रहा है कि किसको दिया जाए अमृत, तो आप ही बहुत अच्छी लगती हो, ये लो अमृत, आप ही तय करो किसको देना है। तो मोहिनी रूप ने भगवान ने राक्षसों को कहा, छल किया और अपने हाथ में कलश लिया और राक्षसों को बदले में देवताओं को उसका प्राशन कराना आरंभ किया, देवताओं को मुंह में देना आरंभ किया। तो देवता जब अमृत ले रहे थे तो राक्षस ने देखा, अरे ये तो हमको छल किया जा रहा है और हमको छोड़कर देवताओं को अमृत दिया जा रहा है। तो राहु जो था वो देवताओं का भेष बन के देवताओं के लाइन में बैठ गया और वो आ करके उसने अमृत पी भी लिया और उसको निगलने के पहले देवताओं ने पहचान लिया कि ये तो राक्षस है। तुरंत मोहिनी ने चक्र को आह्वान किया और उसका सर काट दिया, लेकिन तब तक वो अमृत जो है उसके मुंह से उतर के गले तक आ गया था, इसलिए उसका जो गले का हिस्सा है, गले के ऊपर का हिस्सा, वो अमर हो गया और शरीर उसका मर गया। इसलिए आज भी राहु जो है ना हमारे ऊपर बैठा है अमृत पान करके। तो ये जब देवासुर का संग्राम हुआ और जब भी गरुड़ जी इस अमृत को लेकर भाग रहे थे हाँ, तो सबसे पहले वृंदावन में गए वो, और जहाँ पर भगवान ने कालिया नाग का मर्दन किया है उस पेड़ पर वो बैठे कुछ देर के लिए, और कुछ बूंदे उन्होंने उस पेड़ पर दी, ये जानते हुए कि अगले द्वापर में कृष्ण भगवान आएंगे और इस पर चढ़ेंगे और कालिया का मर्दन करेंगे। तो ये वृक्ष जो है जीवित रहना चाहिए, बाकी उसके विष से सब वृक्ष मर जाएंगे, लेकिन ये वृक्ष से ऊपर छलांग मारेंगे तो ये जीवित रहना चाहिए। तो कुछ अमृत उसको दिया उस पेड़ को। तो वहाँ पर भी कुंभ मेला लगता है, मूल कुंभ मेला जो है सबसे पहला वो वृंदावन में कालिया घाट जमुना किनारे लगता है। उसके बाद में वरुण उड़ते गए, राक्षस उनका पीछा करते करते गए, तो गरुड़ जी उज्जैन गए, वहाँ पर कुछ बूंदे गिरी। गरुड़ जी इलाहाबाद गए त्रिवेणी संगम पे, वहाँ कुछ बूंदे गिरी। गरुड़ जी हरिद्वार गए, वहाँ पर कुछ बूंदे गिरी। और गरुड़ जी नासिक भी आए और रामकुंड में भी कुछ बूंदे गिरी उनकी, रामकुंड में गिरी, कुछ कुशावर्त में गिरी, जहाँ पर हम कल जाएंगे। वो जिस जिस तिथि में ये बूंदे गिरी, अलग अलग तिथियाँ हैं उसकी। जैसे कि यहाँ पर जब सूर्यदेव सिंह राशि में प्रवेश करते हैं उसको कहते हैं सिंहस्थ कुंभ मेला, तो उस समय यहाँ बूंदे गिरी थी, इसलिए वो जब राशि आती है जिसमें सूर्य प्रवेश करते हैं सिंह राशि में, तब यहाँ पर कुंभ मेला होता है। हर 12 साल में महाकुंभ होता है हर जगह पर। हाँ, तो चार जगह पर कुंभ मेला क्यों होता है, क्योंकि चार जगह पर अलग अलग तिथियों में अमृत के बूंदे गिरी थी, और ऐसे मान्यता है कि वो जब तिथि जब भी आती है 12 साल के बाद में अर्धकुंभ आता है, उसका बहुत टेक्निकल कैलकुलेशन है वो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब भी वो तिथि आती है तो कुछ समय अर्धकुंभ होता है, जब और तिथि आती है तो वो पूर्ण कुंभ होता है, और हर एक स्थान का अर्धकुंभ का और पूर्ण कुंभ का जो तिथियाँ हैं वो बाकी स्थानों से अलग अलग है, लेकिन फिक्स है। लेकिन तो ये स्थान कुंभ मेला का भी है, और आप सबको जानकर बड़ी खुशी होगी 2015 में सिंहस्थ मेला यहाँ लगने वाला है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत जोरदार तैयारी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर केवल 3 करोड़ लोग आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। यहाँ पर इतनी भीड़ होती है, इतना बैरिकेडिंग होता है, और उसमें शाही स्नान भी होते हैं। आप देखते हैं ना बड़े बड़े महामंडलेश्वर जी आते हैं, तो हमारा इस्कॉन भी उसमें आते हैं, हम लोग भी स्नान करते हैं उस समय, उस पर्व के तिथि पर, उस मुहूर्त पर आकर स्नान करना होता है, तो क्योंकि तब उस अमृत का प्रकट होने का विधान लिखा हुआ है। हम लोग ने त्रिवेणी में स्नान किया है 2 बार, त्रिवेणी इलाहाबाद प्रयाग के कुंभ में स्नान किया है। प्रभुपाद जी भी 1977 में, उनका देहांत होने के पहले 1977 में लास्ट कुंभ मेला में बहुत वृद्ध अवस्था में जाके उन्होंने स्नान किया था। लेकिन हम भक्त लोग जो है वो अमृत की प्राप्ति के लिए स्नान नहीं करते हैं, हम भगवान की भक्ति के लिए स्नान करते हैं। बाकी सब लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए स्नान करना चाहते हैं। भक्त लोग कहते हैं कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो की तई, कितने भी जन्म हो जाए चलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन हमको आपके चरणों की भक्ति चाहिए। तो इस पर्व में बहुत लोग अलग अलग उद्देश्य से आते हैं, कोई लोग कर्म की मुक्ति के लिए आते हैं, कोई लोग सिद्धि प्राप्त करने के हेतु आते हैं, कोई लोग मोक्ष लेने के लिए आते हैं, कोई लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं, अलग अलग उद्देश्य है अपना अपना। जैसे होटल में सब लोग भूखे से जाते नहीं है, कोई लोग मजा करने जाते हैं, लोग इतना भूख तो नहीं लेकिन चला डोसा खा लेते हैं आज, लेकिन किसी को बहुत जोर भूख लगी है, कोई 4 दिन का भूखा है, सब लोग खा रहे हैं लेकिन हर एक का खाने का उद्देश्य अलग अलग है ना। कोई लोग जरूरत से खा रहे हैं, कोई लोग आनंद से खा रहे हैं, कोई लोग मजा करने के लिए एक टाइम पास के रूप में खा रहे हैं, कोई जरूरत तो नहीं उनको लेकिन फिर भी खा रहे हैं। वैसे कुंभ मेला का स्नान तो सब लोग कर रहे हैं, एक ही एक्टिविटी कर रहे हैं, नदी में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन हर एक की चेतना अलग अलग है। और भगवान क्या बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्, जैसे जैसे लोग मुझे अप्रोच करते हैं वैसे वैसे उनको मैं उनका लाभ देता हूँ। तो क्या चाहिए, नहीं मुझे तो इंद्रियों का भोग चाहिए, लो ले लो। आपको क्या चाहिए, को ज्ञान चाहिए, ले लो। आपको क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए, ले लो। हमको सिद्धि चाहिए, मिस्टिक पावर्स, ले लो। और 5वां आदमी बोलता है मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए। बोले आ जाओ इधर बैठो क्योंकि मांगने वाले सब लोग खुद के लिए मांगते हैं ना, मोक्ष भी खुद के लिए मांग रहे हैं, कर्म का फल भी खुद के लिए मांग रहे हैं, सिद्धियां भी खुद के लिए मांग रहे हैं, भोग भी खुद के लिए मांग रहे हैं। उसमें भगवान बीच में नहीं है, भगवान है लेकिन खुद के लिए ही उसको कुछ मांग रहे हैं। लेकिन लास्ट का व्यक्ति जो है कैसा है, वो खुद के लिए नहीं मांग रहे, वो उनकी सेवा के लिए चांस मांग रहा है। भगवान कहते हैं कि सभी अवस्था में आप मुझसे जुड़े रहो, आपको कुछ पूछना भी है मांगना भी है मेरे पास ही आओ, प्रॉब्लम नहीं है। अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो व उदारधि, आपके पास बहुत सारी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, कोई बात नहीं, कम टू मी। आपके पास कोई इच्छा नहीं है, केवल मोक्ष चाहते हैं, तो भी मेरे पास आ जाओ। आपको विरक्त होना है तो भी मेरे पास आ जाओ, मैं सब इच्छाओं की पूर्ति करेगा। लेकिन योगी नाम अपि सर्वेशां मद्गते अंतरात्मना, इन सारे लोगों में से जो व्यक्ति मुझ में जुड़ा हुआ है, मेरी भक्ति में जुड़ा हुआ है, मद्गते अंतरात्मा, अंतरात्मा से मुझसे जुड़ा हुआ है, सेवा में जुड़ा हुआ है, वो मुझे सबसे प्यारा है और वो सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे कौन कह रहे हैं? जिसके पास लोग मांगने जाते हैं वही बता रहे हैं कि मेरे पास मांगने आने वाले जितने सारे वैरायटी के लोग हैं, इनमें से बेस्ट कौन है? वही है जो अपने आप को मेरे सेवा में समर्पित करता है और उस व्यक्ति के लिए मैं समर्पित हो जाता हूँ। वो क्या कहते हैं? तू अपने काम में तो मैं मेरे धाम में। क्या बोला मैंने? तुम अपने काम में, मतलब काम का मतलब क्या है? एक तो होता है काम, वर्क, दूसरा अर्थ काम का है अपनी इच्छा पूर्ति में, एक और काम का अर्थ है इच्छाएं। भगवान से अलग होकर की हुई इच्छाओं को काम वासना कहते हैं। काम वासना का मतलब सेक्स नहीं है खाली, सेक्स एक मेन है उसके अंदर का, लेकिन काम वासना का अर्थ है भगवान को भूल कर की हुई सारी इच्छाएं। तो तू तेरे काम में, मतलब अपने अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में तू लगा हुआ है, तो मैं मेरे धाम में, और अगर तू मेरे काम में तो नहीं, तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में। अगर तू मेरे नाम में अपने आप को अर्पण करता है, मेरे नाम का जप करता है, मुझी को मेरा जीवन समर्पित करता है, तो मैं तुम्हारे सारे काम पूर्ण कर देता हूँ। और भक्त को कौन सा काम होता है? भगवान को सेवा करने का, बस वही उसकी एक इच्छा होती है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्त कैसा होता है? ना उसको ज्ञान की इच्छा होती है, ना कोई वैराग्य की इच्छा होती है, ना कोई मोक्ष की इच्छा होती है, ना कोई ये चाहिए ना वो चाहिए, ना सिद्धि चाहिए, वो केवल भगवान अपने अब भगवान की सेवा करने की इच्छा करता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकोलो अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो भोग चाहते हैं वो भी अशांत रहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं वो भी अशांत रहते हैं, जो सिद्धि चाहते हैं वो भी अशांत रहते हैं, सकले अशांत। क्योंकि सकले क्या कर रहे हैं? वो सब लोग मिलके अपने लिए कुछ ना कुछ मांग कर रहे हैं, इसे संतुष्ट नहीं हो रहे। कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त कैसा होता है? उसको अपने लिए कोई इच्छा नहीं होती है, इसलिए अतएव शांत, हमेशा वो शांत रहता है, उसका मन जो है कभी विचलित नहीं होता है। क्योंकि वो विचलित मन कभी होता है? जब आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, कुछ पूरी हो गई है, कुछ होने वाली है, कुछ चाहिए और आपको, तो मन हमेशा अशांत रहता है। लेकिन जब सब काम छोड़कर भगवान के काम में अपने आप को रत करते हैं हम, तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो यही कुंभ मेला से हमको सीखना है। हम लोग भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन आप देखेंगे हरे कृष्णा के भक्त आते हैं, स्नान भी करते हैं, लेकिन ग्रंथों का वितरण करते हैं वहाँ पर आके। भगवद गीता, श्री कृष्ण भगवान की किताबें जो हैं, जिसमें वेदों का ज्ञान दिया गया है, उन किताबों को लेकर वो जो इकट्ठा इतना बड़ा कुंभ मेला हुआ है, सबको किताबें बांटते रहते हैं। क्योंकि आप लोग स्नान करते हो यहाँ पर आकर, फिर घर में जाके टीवी देखते हो, फिर तंबाकू जाके तो मलते ही हो, कुछ छूटता तो नहीं है, खाली एक रिवाज अपना, रीति रिवाज है अपना, दूर से आना है, संतों ने कहा है तो स्नान करना है, लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं होता है। वही जैसे हाथी कैसा होता है, वो नदी में स्नान करता है, बाहर आता है, सुंड में मट्टी लेता है, पूरे शरीर में डाल लेता है, उसको कहते हैं कुंजर स्नान। हाँ, हाथी का स्नान कहा गया उसको, तो हमको वो हाथी का स्नान नहीं करना है, मतलब नदी में स्नान करना है, पर्वणी को, पर्व को पकड़ना है, कुंभ मेला के पर्व को, मुहूर्त को, समय को, मुक्का मुक्की में करोड़ों लोगों में आके अपना स्नान करके जाना है, ताकि सब पाप से मुक्ति हो जाए। लेकिन बाहर आकर फिर वो दुनियादारी का कचरा जो है वो फिर डाल के फिर दुनियादारी में लिप्त हो जाना है, फिर भागना है नासिक से घर में, प्रभु जी वो रात को पहुंचूंगा ना तो 8 बजे सीरियल है, वो मिस नहीं करना है अपने। फिर क्या मिला, क्या पाया, क्या परिवर्तन पाया? कुछ नहीं, खाली एक साबुन लगा के स्नान किया फिर गंदे हो गए, क्या फायदा है उसका? तो तुकाराम महाराज कहते हैं, अरे नाही निर्मल मन तो काय करेल साबुन, क्या होगा साबुन से जब मन इतना मैल से भरा हुआ है। वो मन केवल जो है भगवान के नाम के उच्चारण से शुद्ध होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और दो काम करते हैं, तीन काम करते हैं एक्चुअली, अभी चार काम करने लगे हैं, बताता हूँ चार कौन से। सबसे पहला सबसे पहला हरिनाम संकीर्तन करते हैं, पूरी मंडली जो है मृदंग करताल पताका ध्वजा बैनर लेके सब जगह घूमते, जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं इकट्ठा हुए, तंबू में जाके सब जगह पर कीर्तन करते हैं, हरिनाम का वितरण करते हैं, सबको हरिनाम सुनाते हैं। फिर भगवान के द्वारा तो ग्रंथ ग्रंथ जो है लिखे हुए हैं, भगवान ने दिए हुए उसका वितरण करते हैं लोगों को। अभी वो लोग स्नान कर रहे हैं लेकिन बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, क्या फ़ायदा उसका? तो उनको लिए पढ़ो इसको, इसको जीवन में उतारो, भगवान ने आपके लिए कहा है ये गीता जो है ना, ये आपके लिए है और किसी के लिए नहीं है, आपके देश की धरोहर है ये, दिस इज़ योर प्रॉपर्टी और किसी की नहीं है, तुम्हारे देश की प्रॉपर्टी है ये, यहीं पर कहा गया उसको, उसको ले लो और पढ़ो उसको, जीवन को बदलो। दूसरा हो गया, तीसरा अन्नामृत यानी प्रसाद वितरण, भगवान को भोग लगा के खिचड़ी सबको पेट भर बांटते हैं, जितने भी यात्री आए हैं सबको पेट भर खिचड़ी बांटते हैं। और चौथा कौन सा? अभी शुरू हुआ है 10 साल से, वो क्या है? मेडिकल कैंप लगाते हैं साथ साथ में, जहाँ जहाँ कुंभ मेला होता है हमारा मेडिकल कैंप लगता है, क्योंकि हजारों करोड़ों यात्री आते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी होती है, बुखार आता है, दस्त लगते हैं, चक्कर आता है उनको, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, तो पूरी मेडिकल सेटअप हमारा लगता है। तो क्या क्या हो गया? शरीर का देखभाल मेडिकल सेटअप से हो गया, प्रसाद से भूख मिट गई, हाँ मेंदू के लिए ज्ञान दे रहे हैं और आत्मा के लिए हरिनाम संकीर्तन, बॉडी माइंड एंड सोल सब तरह का होलिस्टिक सर्वांगीण वैद्यकीय सेवा, सर्वांगीण आत्मा की सेवा, सर्वांगीण देह की और मन की और आत्मा की सेवा, ये हम लोग करते हैं यहाँ पर। तो हम लोग का उद्देश्य मेन यहाँ पर आके स्नान करके पाप मुक्ति का नहीं है, यहाँ पर आके सबसे मेन उद्देश्य है सेवा करने का। जो स्नान करने से भी लाभ नहीं होता है वो लाभ भगवान के नाम करने से होता है। नदी में स्नान करने से, दान पुण्य करने से, तीर्थ यात्रा करने से वो लाभ नहीं मिलता है जो भगवान का नाम का जप करने से होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले आपने देखा होगा ना हर कथा के पहले हम लोग क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम को पुकारते हैं, संकीर्तन, साथ में बैठकर किया हुआ कीर्तन तो संकीर्तन कहते हैं, और वो हम लोग यहाँ पर करते हैं, ताकि इस धाम में जो शक्ति है वो केवल पाप मुक्ति की शक्ति नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, केवल पाप मुक्ति करने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आते हैं ना आना चाहते हैं। इस धाम के अंदर आपको कृष्ण भक्ति राम भक्ति देने का शक्ति है, दैट इज हाईएस्ट। पाप मुक्ति तो एक साबुन की तरह है, वो स्नान करके आपको धुला रहा है, कल दोबारा से दोबारा पसीना आएगा दोबारा साबुन लगाना पड़ेगा, इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन क्या है? आत्मा जब भगवान की भक्ति में लगेगा तब दोबारा स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शरीर नहीं रहेगा, अब दिव्य देह प्राप्त करेंगे, वैकुंठ धाम में जाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। और राम कुंड का महीना हम महिमा हम समझते हैं इस तरह से, हमारे लिए कपालेश्वर महादेव का जो कथा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो ब्रह्म हत्या से केवल मुक्त हो गए, सुंदर नारायण जी ने अपना रूप पुनः प्राप्त किया, प्रभु रामचंद्र ने स्नान किया, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो परम भगवान है, जो गौलोकेश्वर श्री कृष्ण भगवान जो राम के अवतार में आते हैं, तो यहाँ निवास करके रोज स्नान करते हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे लिए चरणामृत बन गया है, उसके पान करने से हमको उनके चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। दिस स्टोरी इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। बाकी ब्रह्म हत्या की कथा सुनाते हैं क्योंकि वो भी हमारे हाथ से कभी कभी होता है, उसका भी उपाय यहाँ पर है। जैसे कि 1,000 रुपये अपने पास आने के बाद में सारे 1 रुपये की, 10 रुपये की और 100 रुपये की समस्याएं हल हो जाती है ना, 1,000 में सभी सम्मिलित है। लेकिन अगर आप 100 रुपये आपके पास है तो आपके पास 1,000 रुपये की समस्या समाधान नहीं कर सकते आप। तो हम कह रहे हैं कि भगवान का नाम कीर्तन करने से और उस भाव से इस कुंड में स्नान करने से आपकी 10,000 रुपये की समस्या समाधान हो रही है, उसमें 1,000 रुपये की समस्या, 100 रुपये की समस्या, 10 की समस्या और 1 की समस्या सब सम्मिलित है। मतलब क्या बताया आपको मैंने, इसका ये उदाहरण क्यों दिया आपको मैंने, 1 रुपया मतलब कर्मकांड, हमको अच्छे अच्छे कर्म के अच्छे अच्छे फल चाहिए, 10 रुपया मतलब ज्ञान, हमको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करके विरक्त होना है, 100 रुपया मतलब सिद्धि, हमको जादू टोना करना है, अदृश्य होना है, हाँ बड़ा आकार धारण करना है। आपको जानते हैं कि वो कुंभ मेला में क्या होता है, नागा बाबा आते हैं यहाँ पर जो नंगे रहते हैं, उनको कभी आपने देखा है बस से यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, चल के जा रहे हैं, कभी देखा आपने? लेकिन हर कुंभ मेला में दिखते हैं आपको, वो इधर भी दिखते हैं, कुंभ मेला में, त्रिवेणी में दिखते हैं, प्रयाग में, इलाहाबाद में, फिर उज्जैन में दिखते हैं, फिर हैदराबाद में दिखते हैं, लेकिन आते और जाते कहाँ से है पता नहीं चलता है। किसी को पता है क्या वो कैसे आते हैं? एनीबडी नोस? हरे कृष्णा, बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके पास में ऐसी सिद्धि होती है कि वो बीच हिमालय के अंदर रहते हैं बर्फ में, वहाँ के गंगा जी में वो अंदर प्रवेश करते हैं, सीधे जहाँ कुंभ मेला है वहाँ बाहर निकलते हैं। और जब कुंभ मेला समाप्त होता है तो लोगों की नज़र में ना होते हुए दोबारा वहाँ प्रवेश करते हैं और सीधे हिमालय में बाहर निकलते हैं। आप मुझे किसी भी नागा बाबा को कभी भी ट्रेन में बस में बैठा हुआ दिखाओ, कभी भी नहीं मिलेंगे आप, वो खाली प्रकट होते हुए नजर आते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं। और कहीं भी आप कहीं देखा है क्या कोई नंगा आदमी ट्रेन से जा रहा है, बस से जा रहा है? कैसे मुमकिन हो सकता है? नॉट पॉसिबल। और वो तो झुंड में आते हैं, हजारों की संख्या में आते हैं वो, और कोई त्रिशूल यहाँ से घुसाया हुआ है, यहाँ से निकाला हुआ है, कोई तलवार यहाँ से जिह्वा को लेकर जिह्वा से बाहर निकाला हुआ है, क्या क्या करते हैं भयंकर काम वो सब सिद्धियाँ हैं। और अगर आपको लगेगा अरे मैं भी सिद्ध बन जाऊँ तो ऐसे यहाँ नदी में उतरूंगा, हिमालय में बाहर निकलूंगा, कितनी बढ़िया बात है, अट्रैक्टिव, तो अट्रैक्टिव होता है वो, हज़ार रुपये की तरह है। लेकिन याद रखना ये सब खुद के लिए है, खुद को बड़ा बनाने के लिए, खुद को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, सब खुद के लिए है सब ये, भगवान कहीं नहीं बीच में इसके। तो एक रुपया क्या हो गया? कर्मकांड, कर्मों का फल चाहिए हमको। दस रुपया विरक्ति प्राप्त करनी है, हज़ार सौ रुपया सिद्धि, और हज़ार रुपया क्या है? भगवान की भक्ति। और जो भगवान का भक्त बनता है, एक वेदों में श्लोक है, उसका अर्थ यह है कि जो भगवान का भक्त बनता है उसके पीछे भुक्ति और मुक्ति हाथ जोड़े और सिद्धि हाथ जोड़े चलती है, और वो भक्त जो है पीछे मुड़कर भी देखता नहीं उनकी ओर, क्योंकि वो कैसा है? अन्य अभिलाषा शून्यम, उसके मन में कोई अभिलाषा नहीं, ना भोग की अभिलाषा है, ना विरक्ति की अभिलाषा है, ना मुक्ति की अभिलाषा है, ना सिद्धि की अभिलाषा है। कोई मिस्टिक पावर नहीं चाहिए, कोई कर्म का फल नहीं चाहिए, कोई विरक्ति नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उनको, उनको केवल एक ही चाहिए, वो है भगवान की भक्ति। जब रामायण पूरा समाप्त हो गया तो भगवान सबको वरदान दे रहे थे, सबको एक एक बाद एक के बाद वरदान दे रहे थे। तो आखिरी बार हनुमान जी का नंबर आया तो हनुमान जी ने कहा, भगवान ने कहा, कितना सेवा किया आपने मेरा, हाँ क्या क्या नहीं किया आपने, जो कोई भी नहीं कर सका वो सब आपने किया, जहाँ जहाँ कोई भी नहीं कर सकता ऐसी घटना हुई वहाँ वहाँ आप आए और वो काम आपने पूरा किया, जो नामुमकिन अशक्य प्राय था वो सब आपने पूरा किया, अपनी जान की बाजी लगाकर रिस्क लेकर आपने मेरे लिए काम किया, जो कभी कोई सोच भी सकता नहीं ऐसा आपने काम किया। मुझे ये भी विश्वास था कि अगर सीता को कोई ढूंढेगा तो मेरा हनुमान ही ढूंढेगा। तो बोलो हनुमान, आपको क्या वरदान चाहिए? आपको कोई लोक दे दूं, एक लोक का राजा बना दूं, आपको सिद्धियां दे दूं, आपको मेरे धाम का राजा बना दूं? बोलो हनुमान जी, बोलो, मैं आपको देना चाहता हूं। तो हनुमान जी आंखों में आंसू आकर बोलते हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी सेवा चाहिए बस, कभी भी मुझे आप दास के रूप में त्याग मत देना, हमेशा आप मुझे अपना स्वामी बनाए रखना। अभी उस जगह पर हम लोग होते ना तो एक बड़ी लिस्ट बनाते हैं हम बोलते भगवान एक दो घंटे का टाइम दो चला घर जाके बेबी से सबसे बात करता हूँ, इतना अच्छा मौका मिला है, आप बोल रहे हो आप तो, दो घंटा घर जाके लिस्ट करता हूँ, फिर आप उसको अप्रूव कर देना। कोई विचार नहीं दूसरा मन में, कोई अन्य विचार है ही नहीं कि क्या मांगो अभी, नहीं मांगना क्या है वो हमेशा फिक्स है, वो चाहे वो कोई भी हो, संत बोल रहे हैं क्या आशीर्वाद दो तो भी मांगना फिक्स है। वो क्या बोलते हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका दास बनाए रखना और कभी सेवा से वंचित नहीं करना। तो प्रभु ने हनुमान को गले लगाया, कहते हैं मैं स्वयं पूरा आपका हूं, आई एम योर्स। तो जो व्यक्ति ऐसा होता है ना वो प्रभु उसके हो जाते हैं, और जो कुछ मांगता है ना भगवान से वो केवल वो वस्तु उसकी हो जाती है। समझ में आया आपको? जो उन सारे वस्तुओं का उगम है वो आपको दे रहा है, आपको क्या चाहिए? धन चाहिए, मुक्ति चाहिए, ये लो जो चाहे ले लो, लेकिन वो अपने आप को सुपुर्द नहीं करते हैं। लेकिन जो कहता है कुछ नहीं चाहिए आपकी सेवा चाहिए, तो वो उसके बन जाते हैं। अपनार बोली, भगवान अपने आप को उसको अर्पण कर देते हैं। तो बताओ सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है? विरक्ति, मोक्ष, कर्म का भोग या स्वर्गवास, क्या आपको चाहिए? ये सब कुछ टेम्पररी है। जब भगवान हमारे हो जाते हैं तो आपको और कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अभी हम लोग रामकुंड में स्नान करने के पहले मैं आपको एक सुंदर और एक कहानी बताता हूँ। सब लोग जग रहे हैं क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी बहुत लोग जग गए हैं इसका मतलब। तो अभी मैं आपको एक ऐसी कथा बताऊंगा कि जो व्यक्ति मुमुक्षु होता है, मतलब इसको कुछ चाहते हैं, कुछ इच्छा है उसको, उसको कैसे बुद्धिमान होना चाहिए ये समझने के लिए कथा है। तो एक राजा ने एक दिन ऐलान किया कि आज मेरा बर्थडे है, आज सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जो भी कोई आएगा मेरे पास, वो जो भी कुछ मांगेगा वो सब मैं दे दूंगा उसको। भी राजा मतलब क्या, सबसे रिच आदमी, उसके पास उसके ऊपर कोई रिच नहीं है एक राज्य में एक देश में। तो राजा ने ऐसा ऐलान करते हैं तो दुनिया भर के लोग आते हैं, राज्य भर के लोग आते हैं, और कोई गाय मांग रहा है, कोई सोना मांग रहा है, कोई जमीन मांग रहा है, कोई जेवर मांग रहा है, कोई खाना मांग रहा है, कोई घर मांग रहा है, कोई जमीन, जो भी आप सोच सकते हो, क्या क्या सोच सकते हो, सब कुछ मांगने के लोग वहाँ पर खड़े थे। दिन भर भीड़ लगी रही, दिन भर राजा देता रहा। सूर्यास्त का समय आया, जनता भी बहुत कम हो गई, मतलब बहुत लोगों ने, उनको पता था कि सूर्यास्त के पहले मांगना है जो भी मांगना है। कुछ लोग दो तीन बार आए, एक बार मांगा कुछ ले लिया, दोबारा लाइन लगा के आए, दोबारा मांगा, दोबारा भी ले लिया। राजा बोलता ले लो, जितनी बार लेना है उतना ले लो, आज का दिन बैठा हूँ मैं देने के लिए। तो जब सब समाप्त हो गया, सूर्यास्त हो गया, तो दूर देखता है, क्योंकि तब तक तो भीड़ सामने थी ना, दूर कहाँ देखेगा। अभी भीड़ समाप्त हो गई तो दूर देखा तो एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया खड़ी है और वो मांगने को नहीं आ रही है, वही खड़ी है। राजा कहता है मंत्री को, जा वो मैया को बुला ले आओ। तो मैया आती है, राजा कहता है आपने कुछ मांगा नहीं? तो मैया कहती है नहीं कुछ नहीं ठीक है। तो राजा समझता है कुछ बात है, नहीं मैया आपको मांगना चाहिए, मेरा बर्थडे आज, जन्मदिन है मेरा, आप मांगो, मैं देने के लिए बैठा हूँ। नहीं बेटा छोड़ दो, जाने दो। तो राजा को और उत्सुकता बढ़ती है, और उत्सुकता बढ़ती है राजा की, नहीं मैया अब तो आपको मैं देखे ही रहूँगा, आप मुझे मांगो। नहीं बेटा आप दे नहीं पाओगे। हाँ ये बात है, ऐसा कुछ मांग रही है जो मैं समझती है कि मैं दे नहीं पाऊँगा, नहीं अब तो मैं अड़ा रहूँगा, अभी मैं देना ही मुझे आप। तो कहती है कि मेरा बेटा बन जाओ, ठीक है आज से मैं आपका बेटा, और वो अपनी झोपड़ी में चली जाती है, राजा अपने महल में चला जाता है। इतना ही कहती है वो, हाँ घर चले जाती है, वो गरीब झोपड़ी में रहती है किधर। फिर राजा मंत्री को बोलता है, अरे याद है मेरे बर्थडे के दिन मैंने उस मैया को अपनी माता माना था, मुझे उसको घर जाना है। अच्छा, तो मंत्री जाकर उसका घर का सर्वे करके आते हैं, किधर रहती है, कहाँ एरिया में है, कौन से एरिया में है, कैसा अच्छा है कि नहीं है। तो कहती है वो तो बहुत झोपड़ी में रहती है, ले जाओ पहले तो महल बना दो, बड़ा महल बना दो, 1000 दासियों को भेज दो वहाँ पर, अच्छे अच्छे वस्त्र भेजो, फर्नीचर भेजो, उसका गोदाम धन धान्य से भर दो, और मेरे दरबार से महल से उसके वो नए बने हुए महल तक एक अच्छी राजमार्ग बना दो, हाईवे, और गहने भेज दो, और दासियों को गहनों से भेज दो, कपड़े भेज दो। तो पूरा एकदम क्या होता है, कोई मांगने की जरूरत नहीं है भाई आपको, बेटा धन कब भेज रहे हो, बेटा भूख लग रही है, अनाज खत्म हो गया है, कब भेज रहे हो, राशन कब भेज रहे हो, बेटा रास्ता नहीं बनाया तुमने, बेटा ये नहीं किया, कोई जरूरत ही नहीं बोलने की। एक बार बेटा बन गया राजा आपका तो सब कुछ आपका ही है, एवरीथिंग इज योर्स। तो उसने राजा से कुछ चीज़ नहीं मांगी, राजा को ही मांग लिया। जब राजा अपना हो गया तो राजा के पास जो भी है देने लायक, जो लोगों को देता है सब उसका हो गया। मतलब आपने या तो एक चीज़ ले लिया, या तो चीज़ का सोर्स जो है वही आपने ले लिया। तो बुद्धिमानी किस में है? इसलिए भगवान के पास जाकर बार बार मांगते मत रहो, वो भगवान को ही खरीद लो एक ही बार, तो फिर वापस एक बार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सब कुछ आपको जो ज़रूरत है वो सब आपका हो जाएगा। बच्चा कभी पिताजी से मांगता है क्या, कुछ छोटा बच्चा एकदम जो गोद में होता है 6 महीने का 3 महीने का, मम्मी 3 महीने का हो गया मेरी नैपी टाइट हो रही है नहीं कब लाओगी, ऐसा मम्मी को बोलता है बच्चा कभी? अरे वो तो 3 महीने के होने के पहले 4 महीने वाली लंगोटी आ जाती है उसकी। कभी कुछ पुकारता है क्या वो? खाली एक ही करता है काम, खाली रोता है बस, एक रोने में सारी जरूरतें पूरी हो जाती है उसकी, खाने की पीने की साफ करने की स्नान करने की जो भी है एक ही अस्त्र है उसके पास। और आपको पता होना चाहिए हमारे पास भी एक ही अस्त्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस एक ही अस्त्र को हम चलाते हैं। और उस अस्त्र से जो भगवान किसी के वश में नहीं होते वो हमारे बन जाते हैं। यही हमारी यात्रा का रहस्य है, कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। हाँ, हमको कुछ नहीं मांगना चाहिए भगवान से, ये दो वो दो, अच्छी पत्नी दो, अच्छा लड़का दो, अच्छा पुत्र दो, उसको पास होने दो, उसकी शादी होने दो, ये घर दो, बंगला दो, गाड़ी दो, इतनी बड़ी लिस्ट है तो पूरी होती है क्या कभी? कभी किसकी पूरी हुई है आज तक लिस्ट? कभी लिस्ट पूरी हुई है? कितने पूरे होने के बाद में नई नई बनती रहती है हनुमान की पूछ की तरह। लेकिन ये सब को छोड़कर उसी की इच्छा करनी चाहिए जो सब चीज़ का स्रोत है, सब चीज़ का उगम है, और उसको प्राप्त करने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए केवल उसका नाम है। वो क्या कहते हैं, तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, लिख के रखना उसको, कभी बहुत विचार करना उसके ऊपर, सोचना उसके ऊपर कि ये क्या रहस्य है। हाँ, तू तेरे काम में तो मैं मेरे धाम में, तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, सारे तेरे इष्ट जो है मैं पूरा करूँगा। अगर तुम अपने मेरे नाम में अपने आप को अर्पण करता है तो मैं तेरा हो जाऊँगा। इसलिए अर्जुन के सारथी बने, इसलिए गोपियों की ताली बजा होते हुए नाचने लगे वो, तो बोल रहे और चाहिए मक्खन, और चाहिए, और नाचना पड़ेगा, तो और नाच रहे हैं। परब्रह्म भगवान जो है नाच रहे हैं बालक बनकर उनका माखन चुराने के लिए। अरे वैकुंठ का ऐश्वर्य छोड़कर उनका चोरी करके छाछ पीने के लिए अवतार लिया था उन्होंने केवल प्रेम के कारण, वो प्रेम के भूखे हैं। और सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हाँ, और सब कुछ उससे नीचे है, एवरीथिंग एल्स इज डाउन। तो हम लोग भगवान से यही कामना करते हैं कि हम उनके नाम से आसक्त हो जाएं, उनके नाम के जप में अपने आप को अर्पण करें, और कुछ नहीं मांगे उनसे, फिर वो अपने आप को आपके लिए अर्पण करेंगे, वो आपके हो जाएंगे, फिर दुनिया में आपके लिए कोई कमी नहीं होगी। जब तक आप जी रहे हो जो भी आपको ज़रूरत है सब पूरा हो जाएगा, जब समाप्त हो जाएगा जीवन अपना तो भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे, और वहाँ पर कोई जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, कोई कष्ट नहीं वहाँ पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तभी हम सब लोग रामकुंड में जाकर स्नान करेंगे, प्रभु रामचंद्र की कृपा की याचना करेंगे। हाँ, न धनम न जनम न सुंदरिम न कविताम वा जगदीश कामये, न कोई धन की इच्छा करेंगे, न कोई पति की इच्छा करेंगे, न पत्नी की करेंगे, न बच्चों की करेंगे, न कोई मोक्ष की करेंगे, केवल आपकी भक्ति चाहिए, यही नाम यही इच्छा लेकर आप डुबकी लगाएंगे तो प्रभु आपके सारी कामनाओं को पूरा करेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हरे कृष्णा।